हम सभी आत्माएं परमात्म मार्गदर्शन के आधार पर अपने पुरुषार्थ को बढ़ा रहे हैं। अपना सबका पुरुषार्थ है ही बाप समान बनना और परमात्म मार्गदर्शन हम आप आत्माओं को मुरली के द्वारा मिल रहा है। तो इस 18 जनवरी पर बाबा की मुरली चली थी कि आप बच्चों को ब्रह्मा बाप समान नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनने के लिए मन का टाइम टेबल बनाओ और कर्म योगी बनो, अशरीरी बनने का अभ्यास करो। तो पुरुषार्थ है कर्म योगी अशरीरी बनने का, लक्ष्य है ब्रह्मा बाप समान नष्टो मोहा स्मृति लब्धा बनना। गीता ज्ञान का 18वां अध्याय अर्थात अंतिम गीता ज्ञान का शब्द है ही नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। तो ब्रह्मा बाबा किस पुरुषार्थ के आधार से नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बन गया, वही पुरुषार्थ हम आप आत्माओं को करना है। तो नष्टो मोहा बनने के लिए और संपूर्णता अर्थात स्मृति स्वरूप बनने के लिए सबसे पहले न्यारा बनना पड़ेगा। न्यारा बनकर फिर उपराम बनना पड़ेगा, फिर उपराम के आधार से अशरीरी भाव का अभ्यास स्वतः चलेगा और अशरीरी हुई आत्मा स्मृति स्वरूप बन ही जाएगी। तो ब्रह्मा बाप पहले न्यारा बना, फिर उपराम बना, फिर अशरीरी बनकर निरंतर योगी बनकर कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर लिया। तो न्यारा बनने की सहज विधि है कमल फूल समान बनना। कमल का फूल स्मृति में रखें तो न्यारा बन जाएंगे। कमल के फूल की विशेषता है कि कमल का फूल पानी, कीचड़ और संबंधी इन तीनों के बीच से जब न्यारा होता है ऊपर आता है तब वो सबको प्यारा लगता है और प्रभु पर अर्पित होता है। हम आत्माओं को भी न्यारा बनने के लिए पहले इन तीन बातों से न्यारा बनना पड़ेगा। जैसे कमल का फूल पानी में है, कीचड़ उसका भोजन है और जल जीवन है और संबंधी उसके साथ हैं, लेकिन जो जल जीवन है, कीचड़ भोजन है और संबंधी लेकिन इन सब के साथ है लेकिन स्वयं सबसे न्यारा है। जो जल जीवन है उस जल से भी ऊपर है, संबंधी से भी ऊपर है और कीचड़े से भी ऊपर है। तब कमल का फूल देखने में सबको अच्छा लगता है, प्यारा लगता है और वही फूल प्रभु पर अर्पित होता है। अगर कमल का फूल पानी के नीचे अंदर है, आता तो नीचे से ही है लेकिन पानी के अंदर है, परिवार के साथ है, तो ना किसी को दिखाई पड़ता है, ना प्यारा लगने का सवाल ही नहीं और अर्पित हो ही नहीं सकता है। ऐसे हम आत्माएं जब इन तीनों से न्यारे बने, कीचड़ अर्थात पुराने संस्कार, पुराने से टोटल कीचड़ पट्टी से न्यारे, और आत्मा का जीवन ये शरीर है। जैसे कमल के फूल का जीवन जल है, वैसे आत्मा का मुख्य जीवन ये शरीर है। तो कीचड़ अर्थात पुराने संस्कार से न्यारे, इस शरीर से न्यारे और लौकिक अलौकिक संबंधों से न्यारे, जब इन तीनों से न्यारे बनो तो सबके प्यारे बनोगे और प्रभु के भी प्यारे बन जाओगे, प्रभु पर अर्पित हो जाओगे। तो न्यारे बनो फिर उपराम सहज हो जाएंगे। उपराम अर्थात गुलाब का फूल, न्यारा कमल का फूल, गुलाब उपराम की निशानी। गुलाब के फूल की तीन विशेषता होती है, जिस विशेषता के कारण गुलाब का फूल उपराम माना गया है। उपराम का अर्थ ही है जैसे आप सब्जी बनाओ, हलवा बनाओ, कुछ भी, तो जब कंप्लीट हो जाता है तो बर्तन को ऑटोमेटिक छोड़ देता है। जब तक पकता नहीं है तब तक बार बार उसे छुड़ाना पड़ता है, न्यारा बनाना पड़ता है। तो कमल का फूल अर्थात न्यारा बनाना और गुलाब का फूल अर्थात सब किनारा छूट गया। छुड़ाना नहीं लेकिन छूट गया। तो गुलाब के फूल की तीन विशेषता है, जानते हैं क्या है? तीन विशेषता है, खुशबू सब में होती है, रूप रंग सभी फूलों में होता है। अच्छा, गुलाब के फूल की तीन विशेषता। पहली विशेषता है कि गुलाब का फूल जब कंप्लीट खिल जाता है पूरा, तो उसके पत्ते अपने आप झड़ जाते। गुलाब के फूल के पत्ते को गिराना नहीं पड़ता, अपने आप ही गिर जाता है और बीच में वही फूल का सार जिसको बूर कहते हैं वही बचता है। तो गुलाब का फूल अर्थात सबसे न्यारा आत्मक स्वरूप में स्थित रहने वाला। चलो बाबा के पास। तो गुलाब के फूल की विशेषता कि स्वतः ही सबसे न्यारा, न्यारा बनना नहीं स्वतः है ही है, सब तरफ से टोटल बुद्धि योग टूटा हुआ, ना दे न दे के संबंध, ना पुराने संस्कार, कुछ नहीं, बस मैं आत्मा मेरा बाबा, सबसे टूटा हुआ। तो पहली निशानी है कि आत्मक स्वरूप में स्थित सब तरफ से बुद्धि योग टूटा हुआ। दूसरा गुलाब के फूल की निशानी है क्या पांडव? हैं? कांटों के बीच में, कांटों के बीच में तो और भी फूल रहते। गहराई से सोचो। दूसरी निशानी है कि गुलाब के फूल पर कभी भंवरा नहीं बैठता है और फूलों पर भंवरा बैठता है, लेकिन गुलाब के फूल पर भंवरा नहीं बैठता है। खुशबू है, रंगत है, सब कुछ है, लेकिन भौंरा नहीं बैठता है। अर्थात गुलाब का फूल जो होगा ना किसी आकर्षण में आएगा, ना किसी को अपनी तरफ आकर्षण में लाएगा। न्यारा, जिसको बाबा कहता था ना बिसरो ना याद रहो, भूलो भी नहीं और याद भी नहीं रहो, ना बिसरो ना याद रहो। तो दूसरी निशानी गुलाब के फूल की कि कोई आकर्षण नहीं, उसके ऊपर भंवरा नहीं बैठता है। और तीसरी निशानी है कि एक गुलाब के फूल को ही रूह शब्द से जोड़ा गया है। रूहे गुलाब, रूहे इसेंस, मतलब रूह शब्द सिर्फ गुलाब के फूल से जुड़ा है। किसी भी फूल का इसेंस बनता है सभी फूलों का, लेकिन रूह शब्द नहीं जुड़ता है। एक गुलाब के फूल में रूह शब्द जुड़ा हुआ है। तो रूहे गुलाब अर्थात इसेंस फूल, इसेंस अर्थात सार स्वरूप। क्या सार है ज्ञान का? कि मैं आत्मा हूं, मुझ आत्मा का पिता शिव बाबा है, मुझ आत्मा को शिव बाबा को याद करके शिव बाप समान बनकर साथ साथ घर चलना है, फिर राजधानी में आना है। यह ज्ञान का सार है। इस सार स्वरूप में स्थित रहने वाले को उपराम कहा जाता है, रूहे गुलाब कहा जाता है। मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, मुझे आत्मा को शिव बाप समान बनकर शिव बाप के साथ साथ घर चलना है, फिर राजधानी में आना है। इसको कहा जाता है रूहे गुलाब। तो है पहले न्यारा, फिर उपराम, फिर जो ऐसा उपराम बन जाएगा उसका अशरीरी होने का अभ्यास सहज चल जाएगा। और जो अशरीरी होने के अभ्यास में सफल हो गया वो तो स्मृति स्वरूप बन ही जाएगा, क्योंकि जितना आत्मक स्वरूप की स्थिति उतनी बाबा की याद। जैसे शरीर समझने से शरीर के संबंधी संस्कार सब स्वतः याद रहते हैं, ऐसे आत्मा समझने से आत्मा के संबंधी, आत्मा का सर्वस्व परमात्मा ही है, उसकी याद स्वतः रहेगी। तो मुख्य है न्यारा बनना, बिना न्यारे बने उपराम नहीं बन सकते, ना अशरीरी हो सकते, ना स्मृति स्वरूप बन सकते। तो मुख्य है न्यारा बनना तीन बातों से, देह, पुराने संस्कार और संबंधी। तो इनसे न्यारा बनने में मुख्य विघ्न क्या पड़ता है? सबको अनुभव होगा कि जब योग लगाने बैठते हो या चलते फिरते भी याद करने का अभ्यास करते हो तो मुख्य विघ्न क्या पड़ता है? पुराने संस्कार, पुराने संस्कार विघन डालते। पुराने संस्कार विघन क्यों डालते हैं? पुराने संस्कार विघन डालने का कारण है कि अभी तक आप मरजीवा नहीं बने। अगर मरजीवा बन जाओ तो पुराने संस्कार विघन नहीं डालेंगे। जो आप अपने को समझते हो वही संस्कार काम करता है। अभी तक आप अपने को मरजीवा नहीं बनाया है। जब कोई मर के जीता है तो तीन बातें होती हैं। देखो तीनों परिवर्तन में आई हैं। पहली बात, शरीर बदल जाता है। दूसरी बात, परिवार बदल जाता है। और तीसरी बात, स्थान बदल जाता है। तीन बातें बदलती हैं, शरीर, परिवार और स्थान। आप देखो जीते जी मरकर इन तीनों को परिवर्तन किया है। पहली बात, शरीर बदल जाता है। आप जीते जी मरकर क्या अपने को शरीर बदलना अर्थात ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी समझना, यह अभी तक चेक करो तो सबको क्या याद रहता है? मैं कुमार हूं या भाई हूं या कन्या हूं या मां हूं सास हूं, मतलब जो इस देह भान पर है वही याद रहता है। क्या देह भान वाला मरजीवा हुआ है? तो सबसे पहले तो मरजीवा बनो। जब तक मरजीवा नहीं बने हो पुराने संस्कार जा नहीं सकते। अनुभव होगा जब अपने को मां समझते हैं तो बच्चे पर गुस्सा स्वतः आता है। अपने को सास समझेंगे तो बहू को डांटना अपने आप ही आ जाता है। अपने को भाई समझते हैं, मैं बाप हूं, तो देह अभिमान स्वतः इमर्ज हो जाता है, मैं इस घर का मालिक हूं। मतलब जो अपने को समझते हैं वो संस्कार स्वतः इमर्ज होता है, करना नहीं पड़ता है, इमर्ज होता है। मैं कन्या हूं ये समझने से कमजोर हूं स्वतः ही संस्कार आ जाता है। है नहीं, लेकिन जो अपने को समझते हैं वो संस्कार स्वतः इमर्ज होता है। तो सबसे पहला तो आप अपने को ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी समझो। ये फाउंडेशन है। अगर आप यह स्मृति स्वरूप में आ जाओ कि मैं ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी हूं, तो देखो आप कैसे नष्टो मोहा बन जाओगे और स्मृति स्वरूप बन जाओगे। तो पहली बात तो आप इस देह को बदलो। मैं कुमार नहीं, कुमारी नहीं, भाई नहीं, डॉक्टर नहीं, फलाना नहीं, ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी। दूसरी बात, आपका परिवार बदल गया। ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारियों का सर्व संबंधी बाप दादा, मात पिता है, वही सब कुछ है। अब अगर आप लौकिक परिवार में रहते हुए लौकिक परिवार को लौकिक परिवार के स्मृति से देखते हो तो आप जीते जी मरे नहीं हो। अगर लौकिक परिवार की स्मृति से देखोगे तो वही संस्कार इमर्ज होगा। उदाहरण के रूप से मान लो आप लौकिक में आप अपनी बच्ची को बच्ची की दृष्टि से देख रहे हो, मेरी बच्ची है। अब अगर बच्ची के स्मृति से देख रहे हो तो अगर बच्ची थोड़ा भी आपके विचार के विपरीत कर्म करती है आपको तुरंत गुस्सा आ जाएगा। लेकिन अगर आप इस स्मृति में रहो, बच्ची तो है ही है, लेकिन है कौन? ब्रह्मा कुमारी। चाहे ज्ञान में है या नहीं है, लेकिन है तो ब्रह्मा कुमारी। शिव बाबा की संतान तो है, ब्रह्मा बाबा की वंशावली तो है, ब्रह्मा कुमारी। जब आप संबंधों को बदलो, ऊपर से तो वही संबंध है लेकिन आंतरिक स्थिति पक्की हो। ब्रह्मा बाबा ने यह आंतरिक स्थिति पक्का किया कि मैं प्रजापिता ब्रह्मा हूं, इस स्थिति को इतना पक्का कर लिया कि मैं प्रजापिता ब्रह्मा हूं, अपनी लौकिक पत्नी यशोदा को बेटी कहता था, बेटी यशोदा, यशोदा बेटी। कौन है आज तक कोई भी धर्म पिता ऐसा नहीं जो अपनी पत्नी को बेटी कहा? मां माना है, बहन माना है, लेकिन बेटी नहीं कहा। तो जो ब्रह्मा बाबा मैं प्रजापिता ब्रह्मा हूं इतना पक्का कर लिया, तो हम आप भी आंतरिक स्थिति इतना पक्का कर लें कि हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी है। जब यह आंतरिक स्थिति पक्का हो तब ब्रह्मा बाप समान बन पाए। जैसे ब्रह्मा बाबा को पक्का था प्रजापिता ब्रह्मा हूं, प्रजापिता हूं, सारी प्रजा का पिता हूं, ऐसे हमारा सबका है, सारा संसार हमारे बाप का बच्चा भाई बहन, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। तीसरी बात, स्थान बदल जाता है। ब्राह्मणों का परमानेंट एड्रेस माउंट आबू राजस्थान है, सभी ब्राह्मणों का परमानेंट एड्रेस आबू है, वो तो आपका सेवा स्थान है जहां रहते हो सेवा के लिए, परमानेंट एड्रेस आबू है, आत्मा का तो परम धाम है। अब अगर इन तीन बातों के को चेंज नहीं किया, जीते जी नहीं मरे, तो लौकिक में भी अगर कोई मर जाए और फिर जिंदा हो जाए तो क्या कहा जाता है? भूत। और खुद देखो हम क्या होते हैं, सारा दिन किस स्मृति में रहते, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हूं या पास्ट जीवन की स्मृति रहती है। अगर पास्ट जीवन की स्मृति तो पास्ट को ही भूतकाल कहा जाता है। तो पास्ट जीवन की स्मृति भूत की तरह तंग करेगी, वही संस्कार इमर्ज होते रहेंगे। भूत स्वयं तो भटकता ही है और दूसरों को भी बहुत तंग करता है। तो पास्ट संस्कार तो स्वयं भी परेशान और दूसरों को भी दुख देता रहता है। तो क्या भूत फरिश्ता बनेगा? ये अटेंशन दो, अगर फरिश्ता बनना है तो पहला क्वालिफिकेशन, पहला पुरुषार्थ, जीते जी मरो, बिना ब्रह्मा कुमार कुमारी की स्मृति के बिना आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इस स्मृति में आओ तो संस्कार बदल जाएंगे। जितना यह स्मृति रहेगी, मैं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हूं, तो ब्रह्मा कुमार कुमारी की स्मृति ब्राह्मण जीवन के संस्कार को स्वतः इमर्ज करेगी। स्वतः ही याद रहेगा कि ब्राह्मणों का कर्म धर्म क्या है, ब्रह्मा बाप ने क्या किया, ब्रह्मा बाबा कैसे योग करता था, ब्रह्मा बाबा कैसे सेवा करता था, ब्रह्मा बाबा कोई विघ्न आया तो कैसे पार किया। स्वतः ही फॉलो फादर हो जाओगे। जो फॉलो फादर करने में विघ्न पड़ रहा है, नहीं कर पा रहे हैं, वो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी की स्मृति से फॉलो फादर स्वतः हो जाएगा। और जहां फॉलो फादर, वहां ब्रह्मा बाप समान बनने में देरी नहीं, क्योंकि फॉलो करने से डबल फायदा होता है। एक तो फॉलो करने से रास्ता क्लियर मिलता है, और दूसरी बात, जिसको फॉलो कर रहे हैं उसकी दुआएं मिलती है, आशीर्वाद मिलता है। अगर ब्रह्मा की दुआ आशीर्वाद ले ली तो शिव बाबा की स्वतः ही मिल जाएगी, क्योंकि शिव बाबा के शब्द हैं, जो ब्रह्मा के दिल पर चढ़ता है वही शिव बाबा के दिल पर चढ़ सकता है। शिव बाबा के दिल पर चढ़ाने का काम ब्रह्मा मां का है। तो यह पाठ आज पक्का कर लो, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। फिर नष्टो मोहा बनना सहज हो जाएगा। नष्टो मोहा बनने के लिए पांच बातों को स्मृति में रखो तो नष्टो मोहा बन जाएंगे। पहली बात, मैं भगवान का बच्चा हूं। दूसरी बात, गॉडली स्टूडेंट हूं। तीसरी बात, रूहानी यात्रा पर हूं। चौथी बात, खुदाई खिदमतगार हूं। और पांचवी बात, योद्धा हूं, योद्धा हूं। यह पांच बातें अगर सारा दिन जैसा समय अगर याद रखो तो नष्टो मोहा बन जाओगे। पहली बात, मैं बच्चा हूं। जब आप खुद ही भगवान के बच्चे हैं, खुद ही बच्चे बन गए, तो फिर आपका बच्चा परिवार कहां से आया? जब खुद ही बच्चे बन गए तो नष्टो मोहा हो ही गए ना। क्योंकि जब खुद ही बच्चा हो तो आपका तो माता पिता टीचर सब भगवान है। दूसरी बात, गॉडली स्टूडेंट हूं। गॉडली स्टूडेंट की स्मृति पढ़ाई पर ध्यान खिंचवाएगी। और जितना आपका मन बुद्धि पढ़ाई पर जाएगी उतना मन बुद्धि व्यर्थ से बच जाएगा। अगर मन बुद्धि व्यर्थ से बचा, पढ़ाई पर ही रहा, तो धीरे धीरे आत्मा उड़ती कला की तरफ जाने लगेगी। क्योंकि व्यर्थ संकल्प नीचे लाता है, समर्थ संकल्प ऊपर चढ़ाता है। हमारा सबका मन बुद्धि खाली होने के कारण कार्डली स्टूडेंट हूं ये भूल जाने के कारण पढ़ाई स्मृति में नहीं रहती है, तो मन खाली रहता है भगवान के ज्ञान से। तो जब खाली रहता है तो खाली मन शैतान का घर कहा जाता है। अगर खाली मन है तो क्या सोचेगा? कुछ ना कुछ तो सोचेगा ना। खाली है तो क्या सोचेगा? शैतानी वाली बात, पूर्व संस्कार वाली बात। अगर मन को काम दे दिया है, पढ़ाई में बुद्धि लगी है, तो फिर समर्थ है, अच्छी बात सोचेगा। तीसरी बात, यात्रा पर हूं। जब कोई यात्रा पर जाता है तो जहां जाना होता है वो स्थान और जिस देवी या देवता के पास जाना होता है उसकी याद, दो बात याद रहती है। तो आप यात्रा पर हो, आपकी यात्रा है परम धाम। और किसके पास? शिव बाबा के पास। मुझे घर जाना है अपने बाप के पास, घर जाना है अपने बाप के पास। यह स्मृति स्वतः ही संसार से न्यारा बना देगी। क्योंकि परम धाम में न शरीर है, न शरीर से संबंधित कोई चीज है। इसके बाद, खुदाई खिदमतगार हूं। हमारा हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म सेवा प्रति हो। उदाहरण के रूप से मान लो माताएं खाना बना रही है। अब खाना बनाते समय यह स्मृति लाएं कि ये जो हम भोजन बना रहे हैं प्यारे पिता परमात्मा को भोग लगाएंगे, जो प्यारे ते प्यारा बाबा है उसके लिए बना रहे हैं। जिस भगवान को भोग लगाने के लिए कितनी भक्ति की, आज उस भगवान को हम अपने हाथों से बनाया हुआ भोजन स्वीकार करेंगे। भगवान मेरे हाथ का भोजन खाएगा, वाह मेरा भाग्य। ऐसे स्मृति में भोजन बनाओ तो जो भोजन खाएगा उसका हृदय शुद्ध हो जाएगा। वही भोजन बनाना ईश्वरीय सेवा होगी। तो आपका हर कर्म, आप नौकरी कर रहे हो, अंदर संकल्प रहे, ये काम हम ईश्वर के डायरेक्शन के प्रमाण कर रहे हैं, शिव बाबा के श्रीमत प्रमाण कर रहे हैं। इससे जो पैसा मिलेगा ईश्वरीय सेवा में लगेगा, संसार की सर्व आत्माओं का कल्याण होगा, सर्व आत्माएं दुख से छूट जाएंगी, भगवान से अपना वर्षा ले लेंगी। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य जो हमको इतना ऊंचा सेवा का चांस मिला है। कर रहे हो लौकिक काम, हो गया खुदाई खिदमतगार। तो जो भी संकल्प बोल कर्म करो, खिदमत हो, ईश्वर की सेवा अर्थ हो। पांचवा योद्धा हो। योद्धा को दो बात याद रहती है, लड़ाई और विजय, युद्ध और विजय। योद्धा हूं यह स्मृति है, हमें बुराइयों पर विजय प्राप्त करनी ही है, बुराइयों पर विजय प्राप्त करनी ही है। तो कोई भी विघ्न परिस्थिति हमें रोक नहीं सकती, इन पर विजय प्राप्त करनी ही है। सर्व शक्तिवान की शक्ति मेरे साथ है। इस स्मृति से, पांच बातों की स्मृति से नष्टो मोहा पंचोगी। तो जो आत्मा नष्टो मोहा बनी वो स्मृति स्वरूप स्वतः बन जाएगी। तो जो ब्रह्मा बाबा का हम आप सबको विशेष संबल रखा है कि इस जैसा बनना है, तो आप नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप स्वतः बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।